ओम शांति। संगम युग की हमारी अचीवमेंट है, हमारी आध्यात्मिक अवस्था। हम सिर्फ ज्ञान सुनते नहीं हैं, सिर्फ समझते नहीं हैं, सिर्फ सुनाते समझाते नहीं हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान के हर सत्य को अभ्यास में लाते हैं। बाबा कहते हैं हमारा जीवन एक प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में कुछ संशोधन हमें नहीं करना है, क्योंकि सत्य तो बाबा ही हमें बता रहे हैं। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को पाने की है। हम खुद कौन हैं, भगवान कौन है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए वो खोजते रहते हैं, पर हम सबका सौभाग्य है कि हमें तो स्वयं भगवान ने आदि मध्य अंत के आलोक परलोक के रचयिता और रचना के सारे ही राज बता दिए हैं। हमें सिर्फ उन सत्यों को निश्चयात्मक बुद्धि बनकर अभ्यास में लाना है, जिससे अनुभव प्राप्त होता है। और ये अभ्यास निरंतर हमें करना है, जीवन के अंत तक हमें ये अभ्यास करने हैं। तो धीरे धीरे हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हैं, हमारी एक स्थिति बनती जाती है, जिस स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। वो सत्य हमारे जीवन में समा जाता है, गुण और शक्ति में बदल जाता है। तो उसको हम स्थिति कहते हैं, अवस्था कहते हैं। हम सबने पूरा जीवन अब इसमें लगा दिया है, क्योंकि जीवन और जगत का सत्य हमें मिल चुका है। और ये संगम का समय है, जब बाबा आते हैं और फिर से हमारी आत्मा स्थिति को उन्नत बनाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि अपने अनादि आदि स्वरूप में हम जो थे जैसे थे ऐसा ही फिर से बन जाना है ना। लक्ष्य सभी का है, लक्ष्य सभी का। इसलिए सभी रोज ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, ये नित्य का अभ्यास धीरे धीरे बनाता जाता है। जैसे वे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। नीचे पत्थर है, कितना सख्त है, उनके सामने वो बूंद क्या चीज है, परंतु निरंतरता, कंटिन्यूअस टपकते रहने से वो इतना सख्त पत्थर भी वहां घिस जाता है। समुद्र के किनारे भी देखा होगा, कितनी टेढ़ी बांकी नुकीली पहाड़ियां होती है, पर लगातार लहरें टकराती हैं, धीरे धीरे घिस करके वो स्मूथ बन जाते, वो पत्थर भी टेढ़े मेढ़े पर घिस घिस के जैसे शालिग्राम बन जाते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं। तो ज्ञान और योग की अपनी शक्ति, निरंतरता, कंटिन्यूटी का अपना प्रभाव कि रोज ज्ञान योग करने से कितने भी टेढ़े संस्कार बदल जाते हैं, आत्मभिमानी हम बनते जाते हैं और हमारा स्वरूप स्मूथ बन जाता है। ये बनना, इसको स्थिति कहते हैं, अवस्था कहते। बाबा कहते तुमको यहां बनना है, सर्वगुण संपन्न अभी बनना है, ऐसे नहीं सतयुग में जाके बनेंगे, नहीं, जो बनेगा वो सतयुग में जाएगा। तो हम सबका लक्ष्य है बनना, टू बी, मुझे बनना है, औरों को बनाना है। और जैसी हमारी अवस्था बनेगी, वही स्थिति लेकर हम सतयुग में जाएंगे। जिस अवस्था के साथ संगम युग को समाप्त करेंगे, उसी स्थिति से सतयुग को हम शुरू करेंगे। इसलिए बाबा देखो कितना ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि तुमको सतयुग के प्रारंभ से आना है। नई दुनिया वो है, दो चार जन्म के बाद आएंगे तो भी वो यूज की हुई दुनिया हो जाएगी। तुमको आदि से आना है, इतना वर्षा लेना है। तो नेचुरली हमें ऐसी स्थिति बनानी है। इस अंतिम जन्म में बाबा ने कल भी कहा कि ठीक है, ममत्व मिटाकर तोड़ निभाते हो, अब हमें इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आकर्षण कलयुग का किसी को नहीं है ना, हम वहां से न्यारे हो गए, निमित मात्र रहते हैं, क्योंकि हमें उन सब का भी कल्याण करना है, पर हमें कलयुग में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये रोज अपने आप से कंफर्म करो कि मुझे कलयुग में कोई आकर्षण नहीं। हम वहां से अलग हो चुके हैं, हमारा लक्ष्य अलग है, हमारी धारणाएं अलग है, हमारी जीवन पद्धति अलग है, इसलिए अब वहां से मुझे कुछ लेना नहीं, वो कुछ मुझे सीखना नहीं है, अब हमारा टोटल फोकस संगम युग पर है, नई दुनिया पर है। कलयुग से निकल चुके हैं हम, संगम युग में आ चुके हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, याद रखो हम संगम युग पर है। कलयुग की गली को छोड़ चुके हैं, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं। अगर फिर देखेंगे तो वो त्याग की शक्ति कमजोर होती जाएगी। इसलिए बुद्धि से भी जो चीजें हमने छोड़ी हैं वो याद भी नहीं करनी। जो भी कलयुगी हमारी इच्छाएं, वृत्तियां, इंटरेस्ट, शौक थे वो हमने छोड़ दिए। अब हम अपना टोटल टाइम, माइंड, एनर्जी अब संगम युग में लगा रहे हैं, सतयुग के प्रति लगा रहे हैं। इसलिए अब हमारी यात्रा है संगम युग से सतयुग की ओर। अब हमारी यात्रा ये, एक दिन संगम युग का बीतता है, हम एक दिन सतयुग के नजदीक जाते हैं। संगम से चले सतयुग के नजदीक जा रहे हैं, और समय के हिसाब से ये हो रहा है, है ना, टाइम बीता जा रहा है। जो पुराने भाई बहने हैं वो अनुभव करते होंगे, हम सबके देखते देखते साकार बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट पूरा हो गया। हम सबके देखते देखते हमारी दादियां भी संपूर्ण बन गई, आदि रत्नों में से अब एक ही रत्न हम सबके बीच में है, हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, वो भी अपने आप में संपूर्ण होकर ही बैठी। तो देखो समय तो आगे बढ़ रहा है, हमें भी गंभीरता से सोचना है कि अब हमें खुद ही खुद की स्थिति को बनाना है। जो पालना देने वाले थे मेजोरिटी चले गए, बाप दादा, दादियां, दीदियां, वरिष्ठ कितने सब चले, अब हमें खुद अपनी स्थिति बनानी है और अपने नए भाई बहनों को, साथी भाई बहनों को हमें पालना देने। और जैसे जैसे हम अंत की ओर जाते जा रहे हैं, परिस्थितियां और हलचल की आनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अभी पुरुषार्थ कर। और किसका कब पार्ट समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं, कब कौन से हिसाब किताब निकल कर आ जाए किसी को पता नहीं। कोरोना काल में सबने अनुभव कर लिया, न ईश्वरीय परिवार का मिलन, न सेंटर में बाबा के घर जाना, न निमित्त आत्माओं की पालना मिलना। खुद खुद पुरुषार्थ करो। जबकि ये ईश्वरीय परिवार, बाबा का घर और निमित्त बहने हमारी स्थिति बनाने में कितनी पालना देती है। आपस में मिलते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, एक दो में हिम्मत भरते हैं, अपने लगन निश्चय की बातें करते हैं, तो आपस में हम एक दो को और मजबूत बनाते हैं। वो सब बंद हुआ कोरोना में, टाइम था, फुर्सत थी और कोई काम नहीं था, फिर भी अपने आप को देखो, कितना योग लगा बाबा से, कहां तक एकाग्र हो पाए। ये थोड़ा सा समय है हमें अपनी स्थिति बनानी है। ये धारणाएं नेचुरल, अचल, अड़ोल बनानी है। जो शांति की स्थिति बनाई है, जो रूहानी प्रेम की स्थिति बनाई है, शुभ भावना की जो स्थिति बनाई है, पवित्रता की जो स्थिति हमने बनाई, स्थिति माना संस्कार बन जाए, स्वभाव बन जाए, जो कोई हिला न सके। वो हमें खुद लक्ष्य रखना होगा। हमें हमारे खुद में अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए कि ये कौन सा समय चल रहा है, ये लास्ट चांस है हम सबको। फिर आगे कुछ भी बता रहे, बाबा ने हमें मौका दिया है, पर खुद खुद को रोज पक्का कराओ, चेक करो, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी स्थिति है। ये दिखावे की बात नहीं है, टेम्पररी स्थिति की बात नहीं। मुझे अंदर से सतो प्रधान बनना है, अर्थात जो मूल सात गुण हैं, उनका स्वरूप बन जाना है। एक है शुद्ध बनना, पवित्र बनना, कोई भी विकार का कोई अंश न रहे। आज बाबा ने कहा ना, विकार की कोई बीमारी ना हो। सर्विसेबल बनना है तो ना क्रोध हो, ना उल्टे सुलटे ख्याल आते। सिर्फ सर्विसेबल के लिए ये धारणा है। हम तो बाप समान बन रहे, संपूर्ण बनना है। जो संगम युग में बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, वो सतयुगी देवता बनेगा, उच्च राजाई पद पाएगा। बाबा कहते हैं ना, यहां गुण धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए कायम हो जाएंगे। आधा कल्प तक ये प्रारब्ध, ये स्थिति चलेगी। वहां बाबा ने कहा ना, कोई वजीर नहीं, राजा खुद निर्णय लेगा, इतनी उनकी बुद्धि दिव्य होगी। वो सद्बुद्धि बाबा की याद से अभी हमें बनानी। तो एक तो है पुरुषार्थ करते हैं और स्थिति बनाते हैं, परंतु अगर बार बार उसमें विघ्न आएगा, माया आती रहेगी हमें, तो वो हमारी स्थिति की शक्ति को कमजोर कर देती है ना। कहते हैं भाई, कोई चीज अखंड है और टूटी हुई फिर जोड़ते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी मजबूती में फर्क पड़ जाता है। टूटा हुआ जोड़ सकते हैं पर वो मजबूती उसकी नहीं रहती। तो अगर हम बार बार माया के वश होते रहेंगे, हमें याद है बड़ी दादी, लास्ट हम मधुबन निवासियों से मिलती थी, 2-3 मिनट ही बोलती थी। दादी हमेशा कहते थे, माया मुक्त बन जाओ, कर्मातीत बन जाओ। हम सबका पुरुषार्थ ही है माया पर जीत पाने का। तो अपने आप में देखो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कहां तक हम विजयी बने? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा को माया आना ही विघ्न है। फिर वो सेवा में भी विघ्न डालेंगे, यज्ञ में भी विघ्न डालेंगे और आत्माओं की भी इससे डिसर्विस होती। इसलिए मूल चीज है कि मुझे कभी भी माया नहीं आनी चाहिए। कोई भी विकार का आकर्षण ना, तो ये खुद को चेक करना है, खुद को खुद से माया आती है। जो कलियुगी कड़े संस्कार, बाबा कहते हैं ना कि मोटे मोटे विकार तो दूर हो गए परंतु सूक्ष्म धागे अभी बाकी है, विकारों के सूक्ष्म स्वरूप। चलो हम गुस्सा करते नहीं है शब्दों से, कर्म से, चेहरे से भी चलो नहीं करते, पर अंदर गुस्सा आता है, अंदर हम इरिटेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो अंदर तो उत्पन्न हो रहा है ना, वो हमारी स्थिति को कमजोर करता रहता है। तो हमें खुद खुद को समझाना होगा कि मैंने दुनिया में कुछ और विशेष बनने का लक्ष्य नहीं लिया। जब से बाबा मिले, ज्ञान मिले, बस दिन रात बाबा में लगन, और कुछ करना नहीं है। तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? मुझे ये रिजल्ट लाना ही है, विजयी बनना ही है। जब खुद ऐसी लगन रखेंगे तो हम रोज अपने आप पर अटेंशन देंगे और अपने आप को सेफ करेंगे। मुझे कोई देहधारी का आकर्षण ना हो, किसी के दैहिक प्यार की इच्छाएं ना हो, क्योंकि ये हमारे मूल लक्ष्य से विपरीत बातें। हमारा तो लक्ष्य ही है पवित्र बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। ब्रह्मचर्य से तो हमारी पढ़ाई शुरू होती। हमारी मंजिल कौन सी है? संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई भी विकार का अंश न रहे। तो मैं आत्मा जितनी जागृत होंगी, जैसे घर का मालिक घर में जागृत होकर बैठा है, तो ऐसा वैसा कोई हमारे घर में घुस नहीं सकता। ऐसे मैं आत्मा जागृत हूं, मीन्स ज्ञान स्वरूप हूं और योग युक्त हूं, तो मेरे मन में भी ऐसे वैसे गंदे विचार आ नहीं सकते। अगर सिक्योरिटी करने वाला चौकीदार ही अलबेला है, सोया है, तो कोई भी घुस जाएगा। हमारे मन में ऐसे विचार आ नहीं सकते, क्योंकि मन में जो युद्ध चलते हैं वो हमारे किए करे ज्ञान योग के पुरुषार्थ की जमा शक्ति को खत्म कर देता है, युद्ध में ही खत्म हो जाता है। तो अपने आप को हम समझाएं कि जो चीज जीवन में लानी ही नहीं है, मैं मन से क्यों सोच रही, मन में क्यों युद्ध चल रहा है, वो मेरी दिशा ही नहीं है। कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना है, बाबा रोज हमें समझाते। तो मन से क्यों पाप कर रहे, मन को क्यों हमें मेला कर, क्योंकि गंदे संस्कार विकल्पों के रूप में, तूफान के रूप में मन में उठते रहते। इसलिए हम देखो तपस्या करते हैं, आप सभी सब कुछ 3 दिन के लिए छोड़कर योग के लिए आए, तपस्या के लिए आए, स्वदर्शन के लिए आए, कि हम शांति से अपने आप को बैठकर देखें कि मेरी अंदर की स्थिति क्या है। कर्म में विजयी हम बन गए हैं, पर मनसा से भी मुझे निर्विघ्न बनना है। दूसरी बात, संग का प्रभाव पड़ता है, एक दो के संग में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करना है, बाबा को देखना है, बाबा के गुणों का रंग लगाना है। पर प्रैक्टिकल हम सब आपस में रहते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, हम एक दो के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। कहीं बाबा को भूलकर आपस में ही एक दो को फॉलो करने लगते हैं, एक दो के प्रभाव में चलते हैं। जबकि बाबा ने हमें कहा है कि फॉलो मदर फादर, सबके साथ रहो लौकिक या अलौकिक में, पर कैसे रहो, कमल फूल समान। सिर्फ लौकिक में कमल फूल समान रहना है? नहीं, हमें अलौकिक में भी कमल फूल समान रहना। कमजोरी की बातें हमें एक दूसरे से नहीं सीखनी, हमें एक दूसरे से अच्छी बातें सीखनी। इसलिए बाबा कहता है कि लौकिक से तो काफी दूर हो गए, पर अलौकिक में हम दिन रात साथ साथ पढ़ते सेवा करते हैं, तो यहां भी हमें न्यारा और प्यारा बनना है। न्यारा मीन्स देही अभिमानी, देहभान से न्यारा रहना है और बाबा का प्यारा बनना है। बाबा कहते हैं किसी के गुणों पर भी फिदा नहीं हो जाओ, क्योंकि जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो भी बाबा की देन है। आज बाबा के बने तो हम प्यारे बने, मीठे बने, अच्छे बने। जिस घड़ी व्यक्ति ज्ञान और योग छोड़ देता है वो फिर से कलयुगी बन जाता है। तो बाबा ने हमें अच्छा बनाया, इसलिए बाबा के बच्चे बहुत अच्छे गुणवान हैं, सर्विसेबल है, अच्छे मैनर्स वाले हैं। बाबा ने उनको बनाया है। अच्छाई हम सीखें पर फिदा ना हो जाए, हमारी बुद्धि बाबा से सदा लगी रहे। और अवगुण से, किसी के अवगुण हैं तो घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। हर आत्मा में कोई न कोई कमजोरी होती है, हमें भी बाबा ने अच्छे बनाए। बाबा की मुरली में हमेशा आता है, आप नोट करना, बाबा कहेंगे दुनिया वाले नहीं जानते, फिर तुरंत दूसरा महावाक्य आएगा तुम भी नहीं जानते थे। हमें अभिमान ना आ जाए, हमारे में भी कोई ना कोई कमी कमजोरी है, तभी तो हम पुरुषार्थी हैं। तो अपने आप को न्यारा और प्यारा रखना। हम अलौकिक हैं, हम लौकिक नहीं हैं। हम आपस में साधारण न बन जाए, है ना। जब साधारण बन जाते हैं तो हमारे शब्दों में, व्यवहार में, ग्रहण करने में भी वो लेवल डाउन हो जाता है। क्यों बाबा कहते हैं स्वमान में रहो, अपनी ऊंचाई में रहो। तो हमारी स्थिति में डिस्टरबेंस का एक कारण ये है कि हम एक दो के संग दोष में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, जबकि हम सबको मिलाया किसने, बाबा ने। मैं बाबा की बनी, आप बाबा के बने, ये बाबा के बने, तब जाके हम आपस में मिले हैं ना। तो बाबा ने हमें मिलाया, हम आपस में इतना मिल जाते हैं बाबा से दूर हो जाते हैं। तो न्यारा और प्यारा, तो खुद के संस्कार विघ्न लाते हैं, एक दो को देखने से, फॉलो करने से। जो हमारा लक्ष्य है एक रस, ऊंची स्थिति बनाना, वो नहीं रहता है। और उसके लिए दो मुख्य धारणा चाहिए। एक तो साक्षीपन, बाबा कहता है हर एक्टर के पार्ट को साक्षी होकर देखो, वो एक्टर सही कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो देखना डायरेक्टर का काम है, एक्टरों का काम नहीं है। हर एक्टर का काम क्या है? अपना रोल अच्छी रीति प्ले करना, अपने पर अटेंशन देना। मुझे जो पार्ट मिला है वो मुझे बेस्ट प्ले करना है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। मैं गॉडली टीचर हूं, मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। इस यज्ञ में, बाबा के इस बेहद के कार्य में मेरा स्थान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उस पर मुझे ध्यान देना। निमित्त आत्माओं का काम क्या है, बड़ों का काम क्या है, हर एक को अपना रोल प्ले करना। और हम आज बाबा ने कहा ना कि मंथन करो, स्टडी करो। हम अपने पुरुषार्थ में या सेवा में बिजी रहे तो और बात में आप जाएंगे ही नहीं, है ना। कोई ना कोई, बाबा कहते ना प्रभाव आता है इसलिए अवस्था हलचल होती है, परंतु नहीं। मुझे ये समय कौन सा है कि मुझे इस स्थिति में, रूहानियत में, दिव्यता में, पवित्रता में, ज्ञान स्वरूप स्थिति में एक रस चलना है। ये लाइट है, बार बार आए जाए तो अच्छा लगेगा। सब कहेंगे भाई इससे तो बंद कर दो, आंख खराब होगी। तो हमारी अवस्था बने बिगड़े, बने बिगड़े, बने बिगड़े, तो रिजल्ट क्या रहे? तो ठान लो, लक्ष्य बना लो, जो धारणाएं की है उसमें मुझे हिलना नहीं। एक रस और शक्तिशाली बन, हमारी धारणाएं ऊपर नीचे हुई मीन्स हम धारणाएं तो की पर उसमें मजबूत नहीं। कहते हैं ना अंगद ने आसन बनाया, सब आए पर किसी से हिला नहीं। क्योंकि अंग अंग बाबा को दे दिया। तो हमें भी जितना जिगरी बाबा से प्यार करेंगे, बाबा जो कहते हैं वो मुझे करना ही है, तो अवस्था अपने आप बनती जाएगी। मेरा अपना अनुभव है कि रोज की दिनचर्या जितनी एक्यूरेट आप रखेंगे अवस्था बनती जाएगी। रोज अमृत वेले उठना है, रोज मुरली क्लास करना है, रोज मंथन करना है, रोज सेवा करनी है, रोज योग तपस्या करनी है। ये हमारी दिनचर्या है, इसमें आलस अलबेलापन नहीं। तो अपने आप आपकी स्थिति, जो मैंने बताया ना कि निरंतर वो लहरें लगने से वो स्मूथ बन जाते हैं। ऐसे नियमित रूप से अटेंटिव होकर जिगरी लगन से हम करते रहते हैं, हमारी अवस्था निर्विघ्न बनेगी। कितनी भी ऊपर नीचे देखेंगे, हमें कोई संकल्प में भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें पक्का निश्चय रहेगा ये बाबा का कार्य है, बाबा संपन्न करके ही रहेगा, हम उनके साथी हैं। तो सेवा में भी अवस्था नहीं बिगड़ेगी, खुद के संस्कार से भी नहीं बिगड़ेगी और संग दोष से भी नहीं बिगड़ेगी। ओम शांति।